एकत्र ज्ञानोगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान, और आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने सचमुच, मतलब सचमुच अर्थशास्त्र का नक्शा ही बदल दिया।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। बिल्कुल सही कहा, हम बात कर रहे हैं जॉन मिनार्ड केन्स की क्लासिक किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, हिंदी में कहें तो रोजगार, ब्याज और पैसे का सामान्य सिद्धांत।
ये किताब छपी थी 1936 में। सोचिए, महामंदी का गहरा दौर था वो। लेकिन कमाल ये है कि इसके जो आइडियाज हैं वो आज भी उतने ही ताज़ा, उतने ही ज़रूरी लगते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, जब भी दुनिया में आप देखिए आर्थिक सुस्ती आती है, या बेरोजगारी बढ़ती है, या फिर सरकारें अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े बड़े कदम उठाती हैं, तो केन्स का नाम, उनका जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है।
तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली किताब के जो ज़रूरी विचार हैं उन्हें समझें आसान भाषा में।
हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस किताब का जो सार है, जो एसेंस है, उसे पकड़ें और ये समझें कि भाई ये आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं केन्स और उनकी सोच की ये दिलचस्प यात्रा।
सबसे पहले तो ये जॉन मेनार्ड केन्स थे कौन? सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा थे वो।
बिल्कुल, 1883 से 1946 तक एक बहुत ही असाधारण ब्रिटिश बुद्धिजीवी। वो गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी, सरकारी अफसर भी रहे, कला के बड़े कद्रदान थे, और हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की आर्थिक व्यवस्था कैसी बनेगी उसके एक मुख्य आर्किटेक्ट भी थे।
और उनकी पढ़ाई लिखाई भी जबरदस्त थी। ईटन, कैम्ब्रिज, कितने नामी संस्थान है। पहले गणित और फिलोसफी पढ़ी, फिर इकोनॉमिक्स की तरफ आए।
आर्थिक सोच थी, उस पर सवाल उठा पाए।
वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, असल दुनिया का अनुभव था उनके पास।
हाँ बिल्कुल, जैसे इन्होंने भारत के लिए ब्रिटिश ऑफिस में काम किया, पहले विश्व युद्ध में ट्रेजरी में थे, और वो जो 1919 का पेरिस शांति समझौता हुआ था उसमें तो ब्रिटिश ट्रेजरी के चीफ रिप्रेजेंटेटिव थे।
और वहीं से उनकी पहली फेमस किताब निकली थी, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस।
उसमें इन्होंने वर्साई संधि की जो कठोर शर्तें थी उनकी जमकर आलोचना की थी,
और भविष्यवाणी भी कर दी थी कि इससे जर्मनी तबाह हो जाएगा और आगे चलकर फिर झगड़ा होगा। और हुआ भी वही।
वो खुद एक सफल इन्वेस्टर भी थे और सरकारों के सलाहकार भी।
उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत के जो आर्थिक उतार चढ़ाव थे, खासकर वो भयानक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसको बहुत करीब से देखा था। तो यही अनुभव और उनका गहरा किताबी ज्ञान, इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें द जनरल थ्योरी लिखने के लिए तैयार किया। वो समझ रहे थे कि जो पुराने सिद्धांत हैं वो इस भयानक बेरोजगारी को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं।
हाँ, उन्होंने महसूस किया कि जो क्लासिकल और शास्त्र उन्होंने पढ़ा था वो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कि लाखों लोग बेरोजगार क्यों हैं, जबकि वो काम करने को तैयार हैं।
इसीलिए उन्होंने एक नया, ज्यादा सामान्य सिद्धांत बनाने का बीड़ा उठाया। ऐसा सिद्धांत जो हर तरह की आर्थिक सिचुएशन को समझा सके, न कि सिर्फ उस खास स्थिति को जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। और इसी ने मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी।
तो फिर ये किताब आखिर है किस बारे में?
इसका सीधा निशाना था उस वक्त का सबसे बड़ा आर्थिक विचार, जिसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं।
हाँ, जो ये मानता था कि भाई बाजार को अकेला छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाएगा, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं। केन्स ने कहा, नहीं रुकिए, ऐसा नहीं होता। उनका सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी तर्क ये था कि किसी देश में कितनी नौकरियां हैं, ये सिर्फ मजदूरी कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है समग्र मांग पर, एग्रीगेट डिमांड।
एग्रीगेट डिमांड मतलब?
मतलब कुल मिलाकर देश में लोग, कंपनियां और सरकार कितना खर्च कर रहे हैं। अगर टोटल खर्च ही कम है तो कंपनियां सामान क्यों बनाएंगी और लोगों को नौकरी पर क्यों रखेंगे,
है ना? हाँ,
ये तो लॉजिकल है। यही इस किताब का आप कह सकती हैं दिल है। ये महामंदी की उस बड़ी पहेली को सुलझाती है कि अच्छी भली पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं भी क्यों सालों साल भयानक बेरोजगारी में फंसी रह सकती हैं।
केन्स ने बताया कि कोई छुपा हुआ ऑटोमेटिक स्विच नहीं है जो इकोनॉमी को हमेशा फुल स्पीड पर ले आए,
बल्कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी सिचुएशन में अटक सकती है जहां लोग पैसा बचा तो रहे हैं लेकिन कंपनियां उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही और लोग उतना खर्च नहीं कर रहे कि सबके लिए काम पैदा हो सके। इसे उन्होंने अल्परोजगार संतुलन कहा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब एक ऐसा बैलेंस जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बाजार इसे खुद ठीक नहीं कर पा रहा।
और यहीं पर यहीं पर केन्स ने वो समाधान सुझाया जिसने सरकारों की भूमिका हमेशा के लिए बदल दी।
क्या था वो समाधान?
उन्होंने कहा कि जब प्राइवेट सेक्टर यानी लोग और कंपनियां जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं कर रहे हों तो सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार अपने खर्च से जैसे सड़कें बनाना, पुल बनाना और अपनी टैक्स पॉलिसी से कुल मांग को, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकती है, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला सकती है।
अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार के लिए एक नया रोल था। किताब क्या करती है कि हमें पुराने विचारों से निकालकर नए विचारों तक ले जाती है। पहले वो पुराने सिद्धांतों की कमजोरियां दिखाती है, खासकर से के नियम की।
से का नियम वो क्या था?
वो ये कहता था कि जितना माल बनेगा उतना बिकी जाएगा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड।
हाँ,
केन्स ने दिखाया कि यह गलत है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी सारी कमाई खर्च नहीं करते, कुछ बचाते भी हैं।
हाँ, बिल्कुल।
और अगर ये बचत वापस निवेश के रूप में, इन्वेस्टमेंट के तौर पर इकोनॉमी में नहीं आती तो फिर कुल मांग कम रह जाती है।
अच्छा, फिर केन्स अपना नया ढांचा खड़ा करते हैं और ये तीन मुख्य मनोवैज्ञानिक चीजों पर आधारित है।
मनोवैज्ञानिक? इकोनॉमिक्स में?
हाँ, यही तो खास बात है केन्स की। पहला, उपभोग की प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब लोग अपनी बढ़ी हुई कमाई का कितना हिस्सा खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं।
दूसरा, पूंजी की सीमांत दक्षता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब है कि कंपनियों को नए इन्वेस्टमेंट से, जैसे कोई नई फैक्ट्री लगाने से, भविष्य में कितने मुनाफे की उम्मीद है।
और ये उम्मीद बहुत हद तक भरोसे पर, कॉन्फिडेंस पर टिकी होती है। यहीं पर केन्स का वो मशहूर शब्द आता है, एनिमल स्पिरिट्स।
एनिमल स्पिरिट्स, सुना है इसके बारे में?
हाँ। और तीसरा फैक्टर है तरलता वरीयता, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी लोग कितना पैसा कैश या आसानी से खर्च होने वाले रूप में रखना चाहते हैं बजाय इसे कहीं और इन्वेस्ट करने के।
इन्हीं तीनों चीजों के आपसी खेल से केन्स ने समझाया कि ब्याज दरें कैसे तय होती हैं, जो उनके हिसाब से बचत से ज्यादा पैसे की मांग और सप्लाई पर निर्भर करती हैं। और सबसे जरूरी, गुणक का सिद्धांत दिया।
ओ हाँ, मल्टीप्लायर, ये तो बहुत सुना है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सरकार का थोड़ा सा खर्च भी अर्थव्यवस्था में कई गुना ज्यादा आमदनी पैदा कर सकता है। संक्षेप में कहें तो ये किताब वो बुनियाद है जिस पर आज का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खड़ा है।
चलिए अब किताब के कुछ खास हिस्सों और उनके मुख्य विचारों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज नहीं, बल्कि जैसे विचार आगे बढ़ते हैं वैसे। शुरू में केन्स ने सीधे सीधे पुराने क्लासिकल अर्थशास्त्र को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि भाई, मेरा सिद्धांत सामान्य है, जनरल है, क्योंकि ये बेरोजगारी समेत हर स्थिति को समझा सकता है, जबकि पुराना सिद्धांत सिर्फ उस खास स्थिति में काम करता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जो कि हमेशा होता नहीं।
और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब लोग काम करना चाहते हैं मौजूदा मजदूरी पर उन्हें काम मिल नहीं रहा, ये एक हकीकत है, ये कोई वहम नहीं है।
और यहीं पर वो अपना सबसे पावरफुल आइडिया लाते हैं, प्रभावी मांग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड।
प्रभावी मांग?
हाँ, मतलब नौकरियां वहां तय होंगी जहां कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड, और कुल आपूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई मिलते हैं। और ये जरूरी नहीं कि ये मीटिंग पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही हो, ये कम पर भी हो सकता है।
ये तो सीधे सीधे से के नियम को काटता है, जो कहता था सप्लाई अपनी डिमांड खुद बना लेगी। केन्स कह रहे हैं नहीं, डिमांड तय करती है कि कितनी सप्लाई होगी और कितनी नौकरियां।
एग्जैक्टली। इसके बाद केन्स अर्थव्यवस्था के दो बड़े इंजन, उपभोग और निवेश, इनको समझने पर फोकस करते हैं।
अच्छा।
उपभोग के बारे में उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प मौलिक मनोवैज्ञानिक नियम बताया।
वो क्या है?
वो ये कि जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो वो खर्च भी बढ़ाते हैं, पर आमदनी जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से खर्च नहीं बढ़ाते, कुछ ना कुछ बचा लेते हैं।
अच्छा, मतलब पूरी बढ़ी हुई इनकम खर्च नहीं करते।
हाँ, इसका मतलब है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी बढ़ी हुई आमदनी का कितना हिस्सा खर्च किया, ये हमेशा एक से कम होता है।
और यहीं से वो मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट निकलता है ना?
बिल्कुल। सोचिए, सरकार ने सड़क बनाने पर 100 रुपए खर्च किए, ये 100 रुपए मजदूरों की आमदनी बने। मान लीजिए मजदूरों ने इसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए, MPC इज इक्वल टू 0.8। ये 80 रुपए दुकानदार की आमदनी बने, दुकानदार ने इसमें से 64 रुपए, 80% खर्च किए, और ये साइकिल चलती रहती है।
तो सरकार के शुरू के 100 रुपए ने इकोनॉमी में कुल मिलाकर कहीं ज्यादा, शायद 500 रुपए की आमदनी पैदा कर दी।
हाँ, मल्टीप्लायर का साइज होता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये दिखाता है कि मंदी के टाइम में सरकारी खर्च कितना पावरफुल हो सकता है। ये तो पॉलिसी मेकर्स के लिए जैसे एक जादू की छड़ी मिल गई।
अच्छा, ये तो हुआ उपभोग, लेकिन इकोनॉमी का दूसरा बड़ा पहिया जो ज्यादा ऊपर नीचे होता है वो है निवेश, इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनियों का नई फैक्ट्री, मशीनरी वगैरह में पैसा लगाना। ये इतना अस्थिर क्यों होता है?
केन्स ने इसके लिए पूंजी की सीमांत दक्षता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC का आइडिया दिया। सीधे शब्दों में ये किसी नए निवेश से भविष्य में मिलने वाले मुनाफे की उम्मीद है।
उम्मीद मतलब पक्का नहीं?
हाँ, यही तो कैच है। कंपनियां तभी इन्वेस्ट करेंगी जब उन्हें लगेगा कि ये उम्मीद वाला मुनाफा पैसा उधार लेने की लागत यानी ब्याज दर से ज्यादा होगा।
और क्योंकि ये भविष्य के मुनाफे की उम्मीद पर टिका है, यहीं पर केन्स का वो फेमस एनिमल स्पिरिट्स वाला विचार आता है।
हाँ, बताइए उसके बारे में।
उनका कहना था कि निवेश के जो बड़े फैसले होते हैं वो सिर्फ ठंडे दिमाग से किए गए कैलकुलेशन पर नहीं टिके होते, ये बहुत हद तक कारोबारियों के मूड पर, उनके कॉन्फिडेंस पर, आशा या निराशा की लहरों पर निर्भर करते हैं।
एक तरह की अंदरूनी उमंग या जज्बे, मतलब गट फीलिंग।
हाँ, कुछ वैसा ही। इसीलिए निवेश इतना घटता बढ़ता रहता है और अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी लाता है।
है ना दिलचस्प कि इकोनॉमिक्स में भावनाओं की भी इतनी बड़ी जगह है।
बिल्कुल।
और इसी निवेश वाले सेक्शन में केन्स ने ब्याज दरों के बारे में भी अपनी नई थियोरी दी, तरलता वरीयता,
लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मतलब कैश रखने की चाहत।
हाँ, पुराने इकोनॉमिस्ट मानते थे कि ब्याज दर बचत करने का इनाम है। केन्स ने कहा नहीं, ब्याज दर असल में कैश, पैसा अपने पास रखने की इच्छा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और बाजार में मौजूद पैसे की कुल मात्रा के बीच का बैलेंस बनाने वाली कीमत है।
लोग कैश क्यों रखना चाहते हैं?
कई वजहों से, रोज के लेन देन के लिए, अचानक कोई जरूरत आ जाए उसके लिए, और शायद इसलिए भी कि उन्हें लगता है कि भविष्य में बेहतर निवेश का मौका मिलेगा तो अभी कैश रखना ही ठीक है।
और इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात सामने आई, तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप।
हाँ, ये क्या होता है?
सोचिए, ब्याज दरें बहुत ही कम हो गई, एकदम जीरो के करीब। अब लोगों को लगेगा कि पैसा बैंक में रखने या बॉन्ड खरीदने से तो अच्छा है कैश ही रख लो, क्या फायदा। अब अगर सेंट्रल बैंक और पैसा छापता भी है तो लोग उसे खर्चने या इन्वेस्ट करने के बजाय बस अपने पास दबा कर रख लेंगे। यानी ब्याज दरें घटाकर इकोनॉमी को रफ्तार देने की जो कोशिश थी वो बेकार हो जाएगी।
अच्छा, ये समझाता है कि क्यों कभी कभी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी काम नहीं करती।
बिल्कुल। फिर केन्स इस पूरी थ्योरी को बेरोजगारी की असली प्रॉब्लम से जोड़ते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि बेरोजगारी है तो मजदूरी घटा दो, नौकरियां बढ़ जाएंगी।
हाँ, ये तो आम सोच थी।
केन्स ने इसका जोरदार खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर सबकी मजदूरी एक साथ घटा दी जाए तो क्या होगा, लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाएगी।
हाँ, सही बात है।
इससे कुल मांग और गिरेगी और नौकरियां बढ़ने के बजाय शायद और कम हो जाए, ये तो उल्टा असर हो गया।
और अंत में केन्स इन सब विचारों के बड़े नतीजों पर बात करते हैं। वो ट्रेड साइकिल यानी इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसे मुख्य रूप से निवेश की उम्मीदों यानी MEC में आने वाले बदलावों से जोड़ते हैं।
अच्छा, वो एनिमल स्पिरिट्स वाले।
हाँ, जब उम्मीदें बुलंद होती हैं, एनिमल स्पिरिट्स हाई होते हैं, तो निवेश बढ़ता है, तेजी आती है, फिर धीरे धीरे मुनाफा कम होने लगता है, भरोसा डगमगाता है, निवेश रुकता है और मंदी आ जाती है।
वो मानते थे कि पूंजीवाद में कुछ कमियां हैं, जैसे वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता, दौलत का बंटवारा भी ठीक नहीं होता, लेकिन वो ये भी मानते थे कि इन्हें सुधारा जा सकता है।
और उनका मुख्य सुझाव क्या था इसके लिए?
निवेश का समाजीकरण। अब इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सारी कंपनियां चलाने लगे।
तो फिर?
बल्कि ये कि सरकार ज्यादा एक्टिव रोल निभाए, वो देखे कि कुल मिलाकर इकोनॉमी में पर्याप्त निवेश हो रहा है या नहीं, ताकि मांग बनी रहे और नौकरियां पैदा होती रहें। एक तरह से सरकार इकोनॉमी की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर थोड़ा ज्यादा मजबूती से हाथ रखे।
वाह, मतलब केन्स ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई बल्कि उसका एक प्रैक्टिकल हल भी सुझाया। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इस किताब के मेन मैसेजेस क्या निकलते हैं?
सबसे पहला और बुनियादी संदेश तो यही है, ये सोचना छोड़ दें कि अर्थव्यवस्थाएं किसी अदृश्य हाथ से अपने आप ठीक हो जाती हैं और हमेशा फुल रोजगार पर चलती हैं। केन्स ने दिखाया कि ये एक खतरनाक वहम है, लंबे समय तक चलने वाली बेरोजगारी एक हकीकत हो सकती है।
दूसरा बड़ा आइडिया, एग्रीगेट डिमांड इज किंग, समग्र मांग ही असली राजा है। पहले सब सप्लाई साइड पर फोकस करते थे, केन्स ने गेम बदल दिया, कहा कि अगर खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे, नौकरियां कहां से आएंगी।
तीसरा, इकोनॉमी में अनिश्चितता और इंसानी मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। वो एनिमल स्पिरिट्स वाली बात, निवेश और खर्च के फैसले सिर्फ नंबर देखकर नहीं होते, भरोसे, उम्मीद, डर, इन सब का बड़ा रोल है। इकोनॉमी सिर्फ मैथ नहीं है, साइकोलॉजी भी है।
चौथा, पैसा सिर्फ लेन देन का मीडियम नहीं है, लोग उसे जमा करके रखना भी पसंद करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, खासकर जब भविष्य धुंधला लगे, और ये कैश रखने की चाहत इकोनॉमी के पहियों को धीमा कर सकती है।
और पांचवा और शायद सबसे असरदार नतीजा, सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकती, उसे एक्टिव रोल निभाना होगा। जब प्राइवेट खर्च कम हो तो सरकार को अपनी फिस्कल पॉलिसी यानी सरकारी खर्च बढ़ाकर या टैक्स घटाकर से उस कमी को पूरा करना होगा ताकि इकोनॉमी स्थिर रहे।
इन आइडियाज ने वाकई दुनिया भर की सरकारों की सोच और एक्शन को बदल दिया। कुछ यादगार कोट्स भी हैं इस किताब से जुड़े।
हाँ बिल्कुल, एक तो बहुत ही फेमस है, लंबे समय में तो हम सब मर ही जाते हैं, अर्थशास्त्री खुद को बहुत आसान काम देते हैं, अगर तूफानी मौसम में वो हमें सिर्फ ये बताएं कि जब तूफान गुजर जाएगा तो समंदर फिर शांत हो जाएगा।
क्या जबरदस्त कटाक्ष है। हाँ मतलब आज की प्रॉब्लम का हल आज चाहिए, कल का क्या भरोसा।
बिल्कुल, एक और गहरी बात, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक दार्शनिकों के विचार, चाहे वो सही हो या गलत, आम तौर पर जितना समझा जाता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सच तो यह है कि दुनिया पर इन्हीं का राज चलता है। ये याद दिलाता है कि कैसे पुराने जड़ पकड़ चुके विचार भी हमारी नीतियों को कंट्रोल करते रहते हैं।
वो एनिमल स्पिरिट्स वाली बात भी सोचने पे मजबूर करती है कि बड़े बड़े आर्थिक फैसले, खासकर निवेश वाले, कितने ज्यादा भरोसे, उम्मीद और बस कर गुजरने के जज्बे पर टिके होते हैं। ये मार्केट की उठापटक को समझने में मदद करता है।
और खुद केन्स का ये मानना भी बड़ा दिलचस्प है, मुश्किल नए विचारों में नहीं है बल्कि पुराने विचारों से पीछा छुड़ाने में है, जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग के हर कोने में बसे हुए हैं। ये दिखाता है कि किसी जमी जमाई सोच को बदलना कितना बड़ा चैलेंज होता है, जैसा उन्होंने खुद किया।
अच्छा, अब जरा सोचें कि ये इन सब विचारों का हमारी आज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, कहां देखते हैं हम इन्हें काम करते हुए।
सबसे सीधा असर तो दिखता है मंदी के टाइम सरकारें जो करती हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद है?
हाँ।
या 2020 की महामारी?
हाँ बिल्कुल।
दुनिया भर की सरकारों ने क्या किया? केन्स के नुस्खे ही तो अपनाए, बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेज, बेरोजगारी भत्ते बढ़ाना, सरकारी पैसे से प्रोजेक्ट शुरू करना, ये सब क्या था? ये प्राइवेट खर्च में आई गिरावट को भरने की कोशिश थी ताकि कुल मांग बनी रहे। वो मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ काम करता है।
और सेंट्रल बैंक भी तो यही करते हैं जब वो ब्याज दरें घटाते बढ़ाते हैं।
हाँ, वो केन्स के लिक्विडिटी प्रेफरेंस सिद्धांत का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पैसे की मांग और सप्लाई को अफेक्ट करके इकोनॉमी की चाल बदलने की कोशिश। लेकिन हाँ, वो लिक्विडिटी ट्रैप वाली बात भी उन्हें ध्यान में रखनी पड़ती है।
ये हमें बेरोजगारी को सिर्फ किसी एक इंसान की नाकामी की तरह नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की एक प्रॉब्लम की तरह देखने में भी मदद करता है। अगर मांग ही कम है तो कंपनियां नौकरियां कहां से पैदा करेंगी? इससे फोकस इंडिविजुअल से हटकर सिस्टम पर जाता है।
और वो मितव्ययता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, भी एक बड़ा सबक है। सोचिए अगर मंदी के डर से हर कोई अचानक ज्यादा बचत करने लगे तो क्या होगा?
कुल मिलाकर खर्च और कम हो जाएगा।
हाँ, अर्थव्यवस्था और धीमी पड़ जाएगी और शायद आखिर में लोगों की कुल बचत भी कम ही हो पाए। जो अकेले के लिए समझदारी लगती है वो सबके लिए नुकसानदेह हो सकती है मंदी के वक्त।
और हाँ, भरोसे का महत्व, वो एनिमल स्पिरिट्स हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों और कंपनियों के विश्वास पर चलती हैं। इसीलिए मुश्किल वक्त में सरकारें सिर्फ पैसा ही नहीं लगाती बल्कि लोगों का भरोसा जीतने की भी कोशिश करती हैं।
तो इस सारी बातचीत के बाद अगर हमारे श्रोताओं को कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी, आप क्या कहेंगी?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि केन्स ने हमें एक जरूरी सच्चाई दिखाई, बाजार हमेशा अपने आप सब ठीक नहीं कर देते, अर्थव्यवस्थाएं लंबे समय तक बेरोजगारी में फंसी रह सकती हैं। इसने हमेशा के लिए बदल दिया कि हम आर्थिक समस्याओं और सरकार की जिम्मेदारी के बारे में कैसे सोचते हैं। ये एक तरह से अर्थशास्त्र की जो पहले की मासूमियत थी उसका अंत था।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि आर्थिक सिद्धांत सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, उनका हमारी जिंदगी पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। केन्स ने सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम जैसे महामंदी और बेरोजगारी उसको समझा ही नहीं बल्कि उसका एक ठोस समाधान भी सुझाया कि सरकार एक्टिव रोल प्ले करे।
हाँ।
उन्होंने हमें ये उम्मीद दी कि हम आर्थिक मुश्किलों के सामने लाचार नहीं हैं, समझदारी और सही एक्शन से हम अपनी किस्मत बेहतर बना सकते हैं। ये किताब अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद एक तरह से आशा का संदेश देती है कि हाँ, चीजें बदली जा सकती हैं।
है ना, ये एक पावरफुल विचार।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।